सत्संग के यह वचन हुजूर बाबा सावन सिंह जी द्वारा फरमाए गए सत्संग के हिंदी अनुवाद पर आधारित हैं। सत्संग के वचन
उपदेश सूरत शब्द के अभ्यास का वचन 20वां शब्द 27वां कोमल चित दया मन धारो परमार्थ का खोज लगाना।
दुनिया में दो काम है, एक अर्थ, दूसरा परम अर्थ यानी परमार्थ। दुनिया के सभी काम, दान पुण्य, यज्ञ तप, बादशाहत, कबीलदारियां, मतलब कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसे अर्थ कहते हैं। बाकी रहा परमार्थ, जो मौत के बाद हमारे साथ जाए वह परमार्थ है। इस दुनिया की कोई चीज हमारे साथ नहीं जाती, न मां न बाप, न बेटा न बेटी, न बादशाहत न दौलत, यहां तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता। फिर भी हम इसका प्यार नहीं छोड़ते। इसके विपरीत जो साथ जाने वाली चीज है उसे हमने कभी हाथ भी नहीं लगाया। साथ जाने वाली चीज परमार्थ है और हर एक आदमी के अंदर है। आंखों तक 9 दरवाजे हैं। जब तक हम 9 दरवाजों में बैठे हैं परमार्थ नसीब नहीं होता। कब नसीब होता है?
जब हम किसी ऐसे आदमी से मिलें जो अंदर जाता हो और हमें रास्ता बताए।
फिर हम 9 दरवाजे छोड़कर आंखों से ऊपर चढ़ें, सूरज और चंद्रमा को पार करें। यहां से परमार्थ की अलफ बे शुरू होती है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आप परमार्थ के खोजी हो, अंदर पर्दा खोलकर परमार्थ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो? कोमल चित्त, रहम दिली, प्यार और प्रेम पैदा करो। लेकिन यहां क्या हाल है? हर एक कौम कहती है कि सिर्फ मेरी कौम रहे और कोई ना हो। हर एक देश कहता है कि मेरा देश रहे और कोई ना रहे। यूरोप और जर्मनी वगैरह को देखो, वे इसीलिए लड़ रहे हैं। सो जब कोमल चित्त और दया रहम आ गए, फिर और क्या काम करो ये आगे बताते हैं।
इंद्री थान विषय को त्यागो सुरत शब्द में नित लगाना।
5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 को विषयों विकारों और खोटे संकल्पों से रोको। आंखें सुंदर सुंदर रूप देखकर खोटे ख्याल ना लाएं, जबान खट्टे मीठे स्वाद ना मांगे, कान भला बुरा ना सुने। जब आप इन्हें रोकते हुए 9 दरवाजों से ऊपर चढ़ोगे, सूरज चंद्रमा पार करोगे, तो शब्द सुनाई देगा। वह गाने बजाने वाला शब्द नहीं, बोलने वाला शब्द नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मतलब कि जितने भी मजहब हैं,
सभी मजहब वालों के अंदर हो रहा है।
उसमें कशिश है, मस्ती है। जब अंदर शब्द प्रकट होता है, काम क्रोध आदि डाकू वश में आ जाते हैं, मन कैद हो जाता है। तुम बाहर देखो, बाहर के शब्द में भी मस्ती है। जब शिकारी जंगल में जाकर नाद बजाता है तो मृग मस्त होकर उसके घुटनों के ऊपर अपना सिर रख देता है। जब बाहर के शब्द में मस्ती है तो अंदर के शब्द का क्या हाल होगा? स्वामी जी महाराज कहते हैं,
नगमः नेक शुनीदम व निदाह वाफिर काबा बुतखाना बनिस्दम शुदा हरदो खाफिर।
वह अंदरूनी राग जिसे ग्रंथ साहब कीर्तन कहता है, इतना मीठा और प्यारा है कि उसके मुकाबले में धर्मस्थान काफिर मालूम होते हैं।
नाम या शब्द लफ्ज नहीं लेकिन लफ्जों के जरिए ही समझा जाता है।
जब लफ्ज नहीं तो कोई वेद शास्त्र ग्रंथ पोथी नहीं। ग्रंथ पोथियों में नाम की तारीफ है लेकिन नाम तुम्हारे अंदर है।
सारे पदार्थ गुरु से पाओ, चरण कंवल में प्रीत बढ़ाना।
कहते हैं जिस गुरु को अंदर रूहानी मंडलों पर ले जाना है, सचखंड पहुंचाना है, वह अंदर है। सबसे पहले क्या करो, उसे अंदर प्रत्यक्ष कर लो, यानी वह हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु अमरदास जी कहते हैं नानक आप छोड़ गुरु माहे समावे। जब एक बार अंदर प्रत्यक्ष हो गया फिर अमेरिका जाओ या अफ्रीका जाओ, वह साथ है। जो सवाल करो उसका जवाब देगा। जब अंदर जाओगे वह क्या कहेगा,
शब्द को पकड़ो और चलो ऊपर।
इस वक्त भी बहुत सी स्त्रियां और पुरुष ऐसे हैं जिनके गुरु हर वक्त साथ है। ये कहानियां नहीं मौजूदा मिसालें हैं, यह कमाई का नतीजा है।
धारा यगम पकड़ सुरत जोड़ो, इस सत्संग में सदा समाना।
वह जो अंदर की अखंड धुन है, करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, उसमें लज्जत है, कशिश है। क्या कहते हैं फरीद साहब, फरीदा सक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां रब न पूजन तुद। शक्कर मीठी है, खांड मीठी है, मिश्री मीठी है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, दूध मीठा है, लेकिन जो लज्जत शब्द या नाम में है वह दुनिया में कहीं नहीं।
तुम उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो,
यह सच्चा सत्संग है। यही गुरु नानक देव जी कहते हैं सत्संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम वखाणिए। यह सत्संग स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा हर एक के अंदर हो रहा है। कहते हैं रोज रोज अंदर चढ़ो और उस सत्संग में अपनी रूह को लीन कर दो।
चली सुरत नभ द्वारा झांका, अंडा तीन लोक दर्शाना।
हमारे शरीर के चार हिस्से हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। आंखों तक पिंड है, जो छह चक्र हैं ये पिंड में खत्म हो जाते हैं। इनके ऊपर अंड है, इससे ऊपर ब्रह्मांड और उससे ऊपर सचखंड है। कहते हैं जिस वक्त तुम पिंड से नाता तोड़कर ऊपर चढ़ोगे आगे अंड शुरू हो जाएगा, जिसे त्रिलोकी का अंडा भी कहते हैं। वहां प्रकाश है, जब प्रकाश हुआ समझो रूह अंड में आ गई। जब तुम वह कैफियत देखोगे, वहां की लज्जत लोगे तो सारी हालत बदल जाएगी, यहां की सारी लज्जतें भूल जाओगे।
परे जाए ब्रह्मंड समानी, सुन सरोवर कंवल खिलाना।
अब रूह अंड यानी तुरियापद और ब्रह्म को छोड़कर कहां गई, पार ब्रह्म में। पार ब्रह्म की रचना कैसी है, कहते हैं ला बयान है। वहां का कोई इशारा? वहां अमृतसर है और उसमें कमल है। जब गुरु नानक साहिब काबा गए, काजी रुकनुद्दीन से मिले। उसने सवाल किया कि खुदा कहां रहता है, उसके महल के कितने बुर्ज हैं, कितनी खिड़कियां हैं। तो गुरु नानक साहिब ने बड़ा ही उत्तम जवाब दिया। यह सारी गोष्ठी उनकी जन्म साखी में दर्ज है। गुरु साहब कहते हैं कि आदमी का शरीर खुदा का महल है, वह जब भी मिलेगा आदमी के अंदर ही मिलेगा। इस महल के 12 बुर्ज हैं। महाराज जी अपने बाजू के तीनों जोड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, एक और एक दो और एक तीन। फिर महाराज जी अपने दूसरे बाजू की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, तीन और तीन छह। इसी तरह छह दोनों टांगों के, छह और छह 12 हो गए। इस महल के 52 कंगूरे हैं, 32 दांत और 20 नाखून, दोनों हाथों और पांवों के। फिर कहते हैं, हौज हयाती पर भरे तिसविच कौल अचल। इसके अंदर अमृत का सरोवर है जिसमें कंवल है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी ने जब बाहर अमृतसर तैयार करवाना चाहा तो मिस्त्री को बुलाकर नक्शा समझाया, लेकिन जब अमृतसर बनाया तो कमल तैयार ना कर सका, उसकी जगह पानी में मंदिर बना दिया। गुरु साहब कहते हैं, ऊपर खास महल पर देवय बांग खुदाए, सुत्ते बांग ना सुन सकन, रिहा खुदाए जगाए। हर एक आदमी के अंदर शब्द धुन यानी बांगे इलाही हो रही है, मगर उसे कोई नहीं सुनता, सभी बाहर ही बाहर उम्र गुजार देते हैं। फिर कहते हैं, सुत्ती पई निबाग सन, सुने ना बांगा कोए, जो जागे से ही सुने, साई संधि सोए। वे अभागे हैं जो इस बांग को नहीं सुनते। जो जागकर उस बांग को सुनता है, उसके अंदर परमात्मा का प्रेम प्यार पैदा हो जाता है। इस अमृतसर की रचना ब्रह्मांड में है, जो वहां जाएगा उसे देखेगा।
अब तो काल कला सब हारा, मान सरोवर पैठ नहाना।
जो तीनों लोकों का मालिक है वह काल है, चौथे लोक का मालिक दयाल है। हमारी आत्मा के ऊपर पहले स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म और उसके अंदर कारण। जब रूह अभ्यास करके सहंस दल कंवल में गई तो इस स्थूल शरीर का अभाव हो गया, जब ब्रह्म में गई तो सूक्ष्म शरीर का अभाव हो गया, जब पार ब्रह्म में गई तो कारण शरीर उतर गया। स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों का संबंध तीनों लोकों पिंड, तुरियापद और ब्रह्म से है। जब रूह अमृतसर यानी पार ब्रह्म में आ गई तो काल का दावा जाता रहा। हर एक आदमी के अंदर मान सरोवर है जो जन्मों जन्मों के पाप उतारता है। बाहर के जितने पानी हैं वे शरीर की मैल उतारते हैं, लेकिन ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो कर्मों की मैल उतारे। ग्रंथ साहिब कहता है, काया अंदर अमृतसर साचा। अब यह वाणी गुरु अमरदास जी की है, मगर जो बाहर अमृतसर है वह गुरु रामदास जी ने बनाया है। अमृतसर को कई महात्माओं ने त्रिवेणी और प्रयागराज भी कहा है, जहां गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, वह भी अंदर है। ऋषियों मुनियों ने अंदर देखकर बाहर नाम रख दिए। उस अंदर के प्रयागराज या मान सरोवर में नहाने से पाप कटते हैं।
अक्षर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया अब देश बेगाना।
यह दुनिया क्षर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नियक्षर पार ब्रह्म है। जब से दुनिया बनी है हम इसमें गुजारा करते आ रहे हैं, लेकिन अब रूह गुरु की कृपा से इस दुनिया को छोड़कर सतलोक जा रही है। ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त भेद हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, ए अक्षर खिर जाएंगे ओ अक्षर इनमें नाही। 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जिसमें 52 अक्षर हों। इस दुनिया का सारा मसाला इन 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो इन 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म में हैं। इसके बारे में मदन साहब कहते हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। गुरु नानक साहब कहते हैं, जे तू पढ़या पंडित बीना, 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जे करे सच समावा। अगर तू गुणी है ज्ञानी है तो वे अक्षर बता। वे अक्षर पार ब्रह्म में है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई है और एक ने सतलोक बनाया है। यही कबीर साहिब कहते हैं, कहो कबीर अक्षर 2 पाख, होएगा खसम ते लेगा राख। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, एक अक्षर हरिमन बसत, नानक होत निहाल। एक जगह गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़या मुकुत ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, तिसकी निर्मल सोई। वह अक्षर तुम्हारे अंदर है और पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। ये मजहब हमारे मजहब नहीं, ये कौमें हमारी कौमें नहीं, यह देश हमारा देश नहीं। हमारा देश सचखंड, हमारी कौम सतनाम और हमारा मजहब सतपुरुष है। रूह यह बेगाना देश छोड़कर उस अपने देश को जा रही है।
सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना।
अब रूह इस पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है।
आगे चढ़े चढ़े अधर समानी, शब्द शब्द का मरम पछाना।
अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहंग शब्द, सत शब्द। रूह दर्जेवार अपने असली मकसद यानी असली देश को जा रही है।
संत बिना कोई समझे नाही, आगे जो जो भेद दिखाना।
ब्रह्म और पार ब्रह्म तक का भेद वेद शास्त्रों और दूसरी किताबों में आ गया है, लेकिन पार ब्रह्म से ऊपर जो मंजिलें हैं वे सिवाय पूर्ण संतों के और किसी को नहीं मालूम। गुरु नानक साहब, कबीर साहब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज, पलटू साहब, स्वामी जी और कई दूसरे महात्मा जो रूहानी मंडलों पर गए,
सिवाय उनके ऊपर का भेद किसी को नहीं मिला।
कहने में आवे नहीं पूरा, उल्टा सुल्टा करत बखाना।
उन रूहानी देशों की लीला, खूबसूरती और लज्जत इस दुनिया में है ही नहीं। उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई नमूना नहीं। संत बयान तो करते हैं मगर मिसाल कोई नहीं मिलती। जो मिलती है वह ठीक नहीं। जैसा कि गुरु नानक साहिब बयान करते हैं, कि नाम हीरा है, जवाहर है। हीरे जवाहरात तो जड़ हैं, क्या नाम भी जड़ है? नहीं, वह चेतन है। इसी तरह तुलसी साहब ने अंदर पांचों स्थानों की कैफियत देखकर जब बाहर बयान करना चाहा, तो आखिर कह उठे कि बाहर वे मिसालें नहीं जिनके जरिए बयान करूं। भीखा साहेब भी कहते हैं, भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने नाही।
वाचक अपनी उक्ति लगावे, अमल बिना नहीं बूझे बुझाना।
अब कहते हैं कि इस भेद को कौन समझेंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जो आमिल हैं, अभ्यासी हैं, खंडों ब्रह्मांडों पर जाते हैं, वे इस राज को समझेंगे।
संतन की गति संत ही जाने, और कहो कैसे पहचाना।
संतों की गति, संतों की कद्र कीमत संत ही जानते हैं। जिस तरह एमए की कद्र एमए वाला ही जान सकता है, दसवीं कक्षा वाला नहीं जान सकता। जो अभ्यास करके सचखंड गया वह संत है। जो पार ब्रह्म में जाए उसे पूर्ण साध कहते हैं। संत का मिलना मुश्किल है, हमें तो साध भी नहीं मिलता। जिस तरह कुंजों की सार कुंजे ही समझ सकती हैं, कबूतर और कौवे उनकी गति को कैसे जान सकते हैं, इसी तरह संत अपनी गति को आप ही समझते हैं।
अपनी युक्ति चतुरता त्यागो, संत बचन को करो प्रमाना।
आप फरमाते हैं कि तुम मन बुद्धि की चतुराइयां, इल्म और अमल छोड़ दो, और जो वचन संत कहते हैं उन्हें मानो।
अब सवाल पैदा हुआ कि हम संतों के वचनों को क्यों माने? आगे जवाब देते हैं।
वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना।
क्योंकि संत उस सचखंड देश में जाते हैं और वाहेगुरु अकाल पुरुष से मिलते हैं, मगर जो बाहर बैठे हैं वे परमात्मा को कैसे समझ सकते हैं? संत उस मालिक के घर की राह बताते हैं, तुम सुनकर उस राह पर चलो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं,
संतन की सुन साची साखी, जो बोले सो पेख है आखी।
संत मन बुद्धि का, वेद शास्त्रों और दूसरे ग्रंथों का आसरा नहीं लेते, बल्कि कहते हैं कि अभ्यास करके अंदर चलो, मालिक से मिलो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी।
राधा स्वामी सबसे कहते संत भेद कोई भेदी जाना।
मालिक की दरगाह में पहुंचने का असली राज, असली भेद संतों के पास है। इसीलिए तुलसी साहब कहते हैं, जो कुछ करहें करहें सोई संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। बिना संतों के राह नहीं मिलती। यही गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तुझ बिन अवर न कोई बिया। इस दुनिया की सारी दातें फना हो जाती हैं, लेकिन जो अंदर असली दात है और जिसका भेद संत देते हैं, वह कभी फना नहीं होती। एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर, शब्द का सुनना भी सत्संग है? महाराज जी ने फरमाया, सत्संग दर्जे बदर्जे है। शब्द का सुनना भी सत्संग है और शब्द में लीन होना भी। उसी सत्संगी ने फिर पूछा, हुजूर संतों की पदवी कहां तक है? महाराज जी ने फरमाया,
हमारी बुद्धि और अक्ल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो,
रानी इंदुमती कबीर साहब के वक्त में हुई है। पहले कबीर साहब ऊपर जाकर मालिक में लवलीन हुए, फिर रानी हुई। जब रानी ने सचखंड जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज अगर आप पहले बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूं तो मैं भजन सिमरन कर करके बेचैन तो ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तू उस वक्त मानती ही नहीं। अगर हमें आज से पहले संतों पर विश्वास आ जाता तो काम ना बन जाता, हम आज यहां भटकते ना होते। तुम देखो, गुरु नानक साहब को कुराही कहा गया। गुरु तेग बहादुर जी का शीश दिल्ली के बाजार में चांदनी चौक में उतार दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने लड़ाई के दिनों में 3 महीने तक कमर नहीं खोली। मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत शम्स तबरेज की खाल उतार दी गई। एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर संतों की दृष्टि किस कदर ताकत रखती है? महाराज जी ने फरमाया,
अमृत दृष्ट पेख है होए संत।
जिस मनुष्य पर संतों की मेहर भरी दृष्टि पड़ गई वह संत हो गया। तुमने कई बार सुना होगा, तुलसी साहब कहते हैं कि जो कीड़ा पतंगा संतों के चरणों के नीचे आकर या उनसे टकराकर मर जाए, संत क्योंकि परमात्मा के ध्यान में जा रहे होते हैं, उसे फायदा होता है। पेड़ सबसे नीची योनि है, अगर संत उसका फल खा लें तो उसे भी फायदा होता है। मतलब यह कि संत कहीं भी जाएं, कुछ भी काम करें, जो उनकी दृष्टि में आ गया सभी को लाभ पहुंचेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि में अमृत है।
वह कहते देखी निज अपनी, तू सुन सुन क्यों बुद्धि लड़ाना। राधा स्वामी सबसे कहते संत भेद कोई भेदी जाना।